नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायके कृष्णाय कृष्ण चैतन्यम् गौरवम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णाय सद्भक्ताय वैराग्यगुरुभक्तिरसं प्रयत्ने अपानं कृपां गुरुजातः सनातनस्तम् श्रीचैतन्य मनोभीष्टम् आपितं स्वयं रूप कदामपि ददाति सवैवास्मि सवैवास्मि न जीवामि स्वयामि इति कृष्णामि राज्ये तं मे माम् यं प्रव्रजन्तमनुते समुपेतकृष्णम् द्वैपायनो विरहसातर्यादिभाव पुत्रेषु तन्मयतया सर्वोऽभिनेतु तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानुकृत्य सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वगुह्यतम श्लोक की व्याख्या आरंभ होने की और जिसने हमने बतलाया था मन मना भव उस श्लोक का उदाहरण के साथ हमने बतलाया इस जगत रूपी युद्ध में ऐसा होना के साथ में और परों के साथ में वहां पर युद्ध चल रहा है युद्ध चल रहा है और उस युद्ध में मनमना भाव होना कठिन था अर्जुन के लिए जैसे ऐसे हम लोगों को भी मन की दुखियों के साथ में युद्ध कर रहे हैं हम मन चंचल है पांडवों की ओर से सात ऑक्स ठोक लेते हैं और कौरवों की तरफ से 11,000 हमारे विपक्ष में 11,000 अक्षौणी सेनाएं हैं हमारे विपक्ष में और हम अकेले अर्जुन के साथी कृष्ण थे और हमारा साथी दुष्ट अर्जुन के पास में ऐसा अग्नि का दिया हुआ रथ था जो कभी न जलेगा न कभी नष्ट और हमारे पास में कैसा रथ है अभी बंबई में इस रथ की गति देख करके आया है कैसी गति, और अर्जुन के पास में गांडीव धनुष था लड़ने के लिए, हमारे पास में क्या चीज है लड़ने के लिए? ऐसी ऐसे हम असहाय दुर्बल, कोई सहारा नहीं। अर्जुन के इतना सहारा था, उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने कहा कि प्रभु ऐसा हमसे नहीं होगा, मन मना भवो, ये तुम्हारा पीछे तो नहीं बस सकते, तो आगे चला पीछे बस। छोटे छोटे बच्चा थे ना, सब सामने बस, कल से सब सामने बैठे। अर्जुन सब प्रकार का सहाय उनको था, कर्तव्य करवाना, और उनके ऊपर रथ पर सजा पर कौन बैठा था?
हनुमान,
हनुमान बैठे। अब तब इनका मन विचलित हो गया, और हमारे इस रथ पर कोई भी सहारा नहीं, शरीर रथ है और हम आत्मा इसके रथी हैं, मन इसका साथी है। कैसा मन? चंचल, कोई भी सहारा नहीं, कब न जाने रथ कहां ले करके डुबा देगा, गिर जाएगा, रास्ते से भटक जाएगा। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा, शिष्य से हम साधना काम प्रपन्न, मैं आपका सब प्रकार से सहमत, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही। सुना भी सब, अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं कर सकता है, मन मना पाओ, कल सुना नहीं उसके संबंध में बतलाया। अर्जुन जब कहा जैसे मैं, मुझसे ऐसा नहीं होगा, मैं चित्त को कैसे लगा सकता हूं? भीष्म द्रोण कर्ण दुर्योधन दुशासन इत्यादि कितने महारथी हमारे विपक्ष में, एक साथ में उनसे युद्ध करना, हमारे सामने भी 6 महारथी हैं, क्या वंशो जीवा उदर उपस्थित मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, उदर का वेग, उपस्थित का वेग, ऐसे देखेंगे एक को भी हम नहीं संभाल सकते हैं, ऐसे महारथी उनको जितना विश्वामित्र जैसे लोग, नारद जी भी नहीं जीत रहे उपस्थित को, हथियार उन्होंने डाल दिया, नारद ने डाला जाना बंदर कामुक लेकर के और उनको नचा दिया माया, ऐसे एक एक सब महारथी, उसके बाद भी कितने प्रकार के अनर्थ। तो अर्जुन के कहने पर भगवान ने कहा अच्छा मन मना रहो, मद भक्तो तू मेरा भक्त बन गया। अर्जुन ने सोच विचार किया, क्या सोच विचार किया? भक्त होना सहज कहना है, करना बड़ा भारी कठिन है, भक्त होना बड़ा भारी कठिन है। भक्त बनने के लिए एक चीज की जरूरत विशेष रूप से है, अन्य अभिलाषिता ज्ञान कर्मात् ज्ञानार्थम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति। कोई प्रकार की अभिलाषा मत करो, कृष्ण की भक्ति की वृद्धि हो, कृष्ण की सेवा मिले, उनके भक्तों की सेवा मिले, इसके अतिरिक्त अपने हृदय में किसी कामना का गंध मत होने दो। कामना तो बहुत जोर की बात, गंध तक न, आप लोग भी सुनिए और ऐसा बनिए तब तक भक्त हो, और नहीं तो फिर भक्त होना भी पड़ा। और ज्ञान कर्म आदि से आपकी वो वृत्ति अनावृत आवृत न हो, बिना कर्म के आदमी नहीं रह सकता, कुछ न कुछ जरूर उसे कर्म करेगा, सोते समय में भी हम कर्म करते हैं, क्या करते हैं, सांस लेते हैं, कागज बदलते हैं, स्वप्न देखते हैं, ये सब तो कर्म ही है। तो बिना कर्म के नहीं करते क्षण मत जात कर पाते, बिना कर्म किए एक मोमेंट एक क्षण भी हम नहीं रह सकते। यदि कोई कहता है कि हम बिना कर्म करते रहेंगे तो वो मिथ्या है। कर्म तो जरूर करना पड़ेगा भाई, खाना जरूर पड़ेगा, शीत और ग्रीष्म से बचने के लिए कपड़े भी धारण करने पड़ेंगे, किंतु देखो उससे भक्ति तुम्हारी ढक न जाए। ये देखो ऐसा मत कर्म करो कि तुम्हारी भक्ति भी खाने में भगवान को न भूल जाओ, भगवान के लिए खाओ, भगवान की सेवा करो। और ज्ञान के बिना भी हम नहीं रह सकते, ज्ञान जरूर चाहिए, ज्ञान नहीं रहने से कहां पैर रखते हैं, चाहिए पैर नहीं रखते हुए गिर जाएंगे, ज्ञान की जरूरत, किंतु उस ज्ञान और कर्म के द्वारा भक्ति छपनी, ये देखना। परोपकार इतना करने लग गए जो भरत महाराज जी जैसे हो करके भूल गए, भक्ति करने आए थे और बहुत भक्ति के उच्च सोपान पर पहुंच गए, श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति भाव अब होने वाला था या हो रहा था, और उसी समय एक हिरण के बच्चे को उपकार की दृष्टि से उसे बचाया बाघ के मुख से और जल में डूबते हुए, और बचा करके उसको दूध पिलाया, ये तो उपकार नहीं, किंतु यह उपकार उनको तीन जन्मों के लिए ले बैठा, तीन जन्मों का था। इसलिए कर्म और ज्ञान तो रहेगा, भक्ति की सेविका उसे बनाओ, भक्ति की वो सेवा करें, हमारा ज्ञान और कर्म के द्वारा भक्ति की सेवा हो, ऐसा नहीं कि भक्ति की वृत्ति भी थक जाए, इसलिए ज्ञान कर्म करेंगे। कैसे, बाजार गए हैं, सब्जी लानी है, ठाकुर जी को देनी है, अच्छी अच्छी सब्जी अच्छे अच्छे फल ला करके अनाएंगे, उसे ठाकुर जी को भोग, ठाकुर जी का प्रसाद, इसके द्वारा भक्ति नहीं घटेगी बल्कि बढ़ गए। और अच्छी अच्छी चीजें हैं ले आए और खूब सुंदर रूप से उसे बनाया, देखा जे चटपटी है कि नहीं है, बहुत अच्छी है या नहीं, गाजर अच्छी तरह से देख करके ला, अशुद्ध गैया का घी गया है सब जगह, और उसमें हलवा खूब सुंदर बनाया, केवड़े उसमें दे दिए, और गिरी भी गरी गिरी मैंने जानते हैं नरियल का शुक्र उसमें डाल डाल दिए ऊपर से, और चांदी का बर्फ उसके ऊपर से लगा दिया, क्या मजा है इसके खाने। बस बिगड़ गया वो कर्म के द्वारा, इसलिए ऐसा नहीं के लिए करो तो वो ठीक, और अपने लिए जहां किया तो सब गलत है, इसलिए ज्ञान कर्म तो जरूर रहेगा नहीं सब बच नहीं सकते, किंतु ऐसे अच्छा जब हमने उसको बनाया और बना करके मैंने बनाया, मैंने बाजार चलाया, मैंने रुपया संग्रह किया और खाया, और खाने का फल भगवान को अर्पण कर दो, तभी कुछ ठीक है, कुछ ठीक, किंतु पूरा ठीक नहीं है। करने के बाद मत समर्पण करो, करने के पहले ही अपने को ही समर्पण कर दो, जब यथार्थ कर्म हो अपने कर्म यज्ञ के लिए, ये गीता का उपदेश है, यज्ञ के लिए जो कुछ खाओ पियो जब करोशी जदर्शनाशी यज्ञ होशी ददात जब तपस्या कम ते सत्पुरुष समर्पण, ये गीता का ही उपदेश है, जो कुछ भी खाओ जहां भी चलते हो जो कुछ यज्ञ करते हो हवन करते हो रसोई बनाते हो बाग बगीचे लगाते हो सब इसके लिए करो अर्पण कर दो, जगत के लोग ऐसा ही करता है। चैतन्य महाप्रभु और गौड़ीय उनके जो भक्त हैं वो कहते हैं ऐसा मत करो खबरदार फट जाएगा, ऐसा मत करो, अपने को ठाकुर जी को समर्पण कर दो जो मैं तुम्हारा हूं,
और तब जो कुछ तू करेगा तू अपने खाएगा भी तो उसको भगवान पुनसार पिता भक्ति से नवलक्षण भगवती अध्यात्म मन अधिक मुक्त मन। ये नौ प्रकार की भक्ति करते थी यदि भगवान को अर्पित होकर के नहीं किया पीछे का मात्र करेंगे तो वो कर्म निष्ठा भक्ति हो जाए शुद्धा भक्ति नहीं। जगत को इन चीजों का पता नहीं है बस एक जानते हैं कि उनको अर्पण कर देना चाहिए क्योंकि इसमें कहां कमियां हैं शुद्ध भक्त लोग इसको सुन। इसलिए पहले अपने को अर्पण करो कर्म को अर्पण मत करो जो कर्म करने वाला है वही अर्पित हो जाए उनका अर्पण करो। जैसे बेटा है बाप का बेटा पहले खा लेता है छोटा सा बच्चा कुछ दे दो तो मुख में लगा ले और पिताजी की गोद में भी है खा लेता है जब थोड़ा सा खा लेगा तो ना तो पिताजी को भी ऐसे नहीं देता मांगने से नहीं देता तभी तो पिताजी प्रसन्न रहते क्यों मारेंगे पीटेंगे भी तभी तो हम आएंगे और कोई दूसरा है। ऐसे हम भगवान के बन जाए समर्पण करते गुरु जी को भगवान भगवान को तो मैं कहां अभी अभी गुरु ही तो है जो हमको भगवान के यहां ले जाए उनके चरणों में अपने को समर्पण करके यदि गुरु से यदि हम भगवान की सेवा करें तो अर्पण करने की जरूरत नहीं क्या होगा यदि उनके हम हो जाएंगे गोपियां खा रही हैं गोपियां श्रृंगार कर रही हैं कृष्ण को निवेदन नहीं करती करती हैं वो किसी की पूजा उजा निवेदन नहीं करती कोई अच्छी चीज मिल गई श्रृंगार करेंगी गहना पहन रही है सब कर रही है किंतु है किसकी इसलिए जो कुछ करती हैं उससे कृष्ण को आनंद कृष्ण बड़े आनंद हो जाते उनके खाने से कृष्ण को पहले मिल जाता है इसलिए पहले हमको समर्पण करना और कृष्ण के लिए सुख के लिए सब कुछ करना चाहिए ऐसी भक्ति होना जरा कठिन क्यों कठिन है सुलभ भी है क्योंकि पूर्व जन्म का ऐसा संस्कार भी पूर्व जन्म का कुछ ऐसा संस्कार भी है और इस जन्म में उस जन्म के संस्कार से भगवान की कृपा से वैष्णव की कृपा से वैष्णव का शुद्ध वैष्णव का संग मिल गया और वैसा यदि हो गया तो शुद्ध पक्षी और उदाहरण के साथ में इसको समझा रहा है जैसे बिल्ल मंगल जी का ही लोग बिल्ल मंगल जी पूर्व जन्म का संस्कार था इसलिए और किसी वेश्या के पास कुछ कर्म भी शेष था भोग भी शेष था पूर्व जन्म कुछ वासनाएं रह गई थी चिंतामणि का संग हुआ और संग होने के बाद में वो कृष्ण का ही गान करते थे और कुछ गान नहीं करते कृष्ण संबंधी चित्रों का लीलाओं का गान करते इनका चित्त मुक्त हो गया संसार बाकी थे और इसके बाद में जो हुआ घटना सब तो आप लोग जानते हैं कि कैसे वो सौ को पकड़ करके उसके पास में गई गया सांप पकड़ करके उसके महल में चलता और कैसे उसने ताना मारा और इसके बाद में उनको वैराग्य हुआ घर छोड़ करके आए घर छोड़ने के बाद में पांच सात दिनों के बाद में चले जा रहे थे वृंदावन की तरफ उधर चिंतामणि भी उनके लिए रो रही है कि भी कृष्ण से मिलने के लिए पागल हो रहे हैं कुएं के पास में पानी पीने के लिए आए कोई किशोरी युवती पानी भरने आई इनको प्यास लगी थी पानी पीने के लिए गए ये पानी पिला दो पानी पिलाने लगी तो पानी पिला भूल गए उसके तरफ कहीं देखते रह गए फिर पानी पिया उसके पीछे पीछे चल दिए घर जाने पर पति ने पूछा कि कैसे महात्मा जी आए तो वो जो गई आपके घर में वो कौन है तो मेरी पत्नी है उनको थोड़ा सा बुला दी उनसे थोड़ी सी बात बुलाया सरल हृदय का वो ब्राह्मण बुला लाया जब इनके सामने आया पता जी देवी जी अपने जो दो कांटे यहाँ के जुड़े में खोसने के लिए है उसको हमें दे। सोचा कि बहुत दूर से पक्षी आ रहा है कहीं कांटे वे गड़ गए होंगे कांटे निकाल लेगा, किंतु दिल में कांटा उसका गड़ा था बात तो थी और ये वहां तक पहुंच नहीं सकता, उस कांटे को निकालने में समर्थ नहीं। उसने दो कांटे लिए और आंखों दोनों आंखों में आंखें पुतलियों के पास में थोड़ा जब ठीक कभी ये ठीक ना हो न रहेगा बात ये आखिर ही संसार में आ सकती की मूल चीज है। आदमी रूप पर आकर्षित होता है अधिक, इसलिए पुरुष के लिए स्त्री स्त्री के लिए पुरुष दोनों ही माया की मुक्ति है। इसलिए श्रीमद् भागवत इत्यादि शास्त्रों में बहुत सावधान किया जाए भटक जाते हैं, इसलिए आंखों को फोड़ करके चल दिए। उस समय कृष्ण के विरह में विप्रलम्ब भाव में ऐसी दशा हुई क्योंकि समस्त इंद्रियां भगवान में ही केंद्रित हो गई, ऐसा जो कुछ चिपक जाए और उन्हीं की चिंता करते 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 वृंदावन की तरफ में चले। उसमें गड्ढे नालियां नदी सर छोटा सा बालक मधुर सर से बोला बाबा कहां जाएगा वो, बड़े प्रसन्न हो गए बेटा मैं वृंदावन चलूंगा, तुम कहां जाएगा बाबा मैं भी तो वृंदावन ही जाऊंगा, कहां रहता है तो वृंदावन में ही रहता हूं, इधर आ गया था किसी काम से, वृंदावन जाएगा हमको ले चलेगा हमारा डंडा पकड़ लेगा, बाबा जरूर पकड़ लूंगा पकड़ने में क्या आता है मैं डंडा पकड़ लूंगा, बस डंडा पकड़ लिया और थोड़ी देर घूमते 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 वृंदावन बाबा वृंदावन में पहुंच गया। रास्ते में क्या हुआ उसके हृदय में ऐसे सुंदर सुंदर उद्गार निकले जो कृष्ण के सुनने के लिए अमृत के समान है। इसको कहते हैं साधन, बिल मंगल साधक हैं और कलयुग गोपी की बात बतलाई वो सिद्धा की बातें बतलाई, मन की वृत्तियां बिना कारण ही जैसे गंगा की धारा हिमालय से निकल करके समुद्र में अपने आप पहुंच जाती है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, ऐसे ही चित्त वृत्तियां धारावत अभिछिन्न गति से कृष्ण के चरणों की तरफ में प्रवाहित होने लगे, रोकने पर भी न रुके वो तो कल बताया है। वो सिद्धा की बातें हैं, आज हम कुछ साधन साधकों की बातें कर रहे हैं। इसलिए भक्ति स्वामी सिंधी इत्यादि ने साधन बिल्ल मंगल को साधक बताया है, ये साधक है और इसके नीचे वाले क्या है हम लोगों की, हम लोग किसमें आप साधक हैं कि नहीं है भाई, वो लोग साधक किस चीज के साधक, हम लोग वैधि भक्ति के निम्न सोपान के साधक होने का अभिमान रखते हैं केवल दम भरते हैं ने? और ये लोग सचमुच में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शनम सत्थात्म निवेदनम ये लोग पूरा रूप में करते हैं। ये जो श्रवण कीर्तन इत्यादि जो है दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के, एक वैधि भक्ति और एक नगन भक्ति, दोनों में ये काम करेंगे किंतु दोनों में जरूर ये करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इनको छोड़ देना पड़ेगा, नहीं भावना बदल जाएगी, रूप ऊपर का एक ही रहेगा किंतु अंतर की निष्ठा, इसलिए ये लोग साधक है। कैसा साधन किया है, आंखों के आंसुओं से अपने हृदय रूपी कुसुम को मिला दिया और कृष्ण के चरणों में उन्होंने अर्पित कर दिया। कृष्ण बिना मांगे अपने आप उसको दे रहे हैं उन पुष्पों को। जैसे एक तो ये बिल्व मंगल साधन, फिर अंत में हुआ क्या, ऐसा साधन कर रहे हैं दिन रात उसी का चिंतन, केवल चिंतन ही नहीं, श्रमणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, सखी के रूप में उनका प्रारंभ से ही सखी भाव है, ये सभी कुछ कर रहे हैं। तो साधन वैसा हमें यहां पर कर्म और ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं, कोई भी कर्म और ज्ञान की चीज नहीं, उनके स्वस्वरूप की भावना उनके अंदर में प्रस्फुटित हो रही है और उसी के रूप में वो मुक्ति से बाहर किसी राधानुगा भक्त को ऐसा ही साधन करना चाहिए। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, इनका ऊपर का रूप साधक का है और अंतर का रूप सिद्ध है, समझ में आ रहा है ना, ऊपर का रूप साधक का है और भीतर का रूप यहां दुई तो साधन
पूरा साधन रूप
बांग्ला में ही तैयार नहीं थी। हाँ, अंतरे के करिया भवन रात्रि दिन अंत करे भीतर में उनका अपना सिद्ध स्वरूप, तो वो हम लोगों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए ऊपर से ही भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से जिनके स्वरूप की स्फूर्ति हो जाए तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी के अंतर की दास। और नीचे से ऊपर से कैसा रहेगा, संख्या पूर्वक नाम गान कालावसानी कुतौ निद्रा आर विहार का विदित हो चातंत तीन औचज राधा कृष्ण गुणस्मते मधुनाम देव सम्मो वंदे रूप सनातन रघुगुरु। संख्या पूर्वक नाम, एक लाख हरि नाम करके तब पानी छूंगा, कम से कम 1008 वैष्णवों को, वैष्णवियों को, धाम को, कृष्ण संबंधी विलास हरियों को, लीलाओं को सबको प्रणाम करेंगे साष्टांग दिन रात उसी का। महाप्रभु जी इनके गुरु थे यदुनंदन आचार्य, इन्होंने इनको दीक्षा दी। दीक्षा जाने के बाद में हरिदास ठाकुर जी का इनका संग हुआ और उनके प्रभाव से हरिनाम करने लग गए। और पूर्व जन्म का संस्कार और नित्य लीला का तो है ही है, साधक जो चरित्र दिखलाते हैं हम उसी को ग्रहण कर सकते हैं, सिद्ध हम नहीं कर सकते, इसलिए साधक रूप से हम उनका वर्णन कैसे साधन करते। कुछ दिनों के बाद में अस्पराशी नारी किशोरी से शादी की, राजा के लाडले राजकुमार, शरीर भी सुकुमल, छोटी सी अवस्था 16 वर्ष की, कृष्ण के विरह में पागल हो गए, कितनी बार घर छोड़ा, घर वालों ने पकड़ लिया, नित्यानंद प्रभु जी की कृपा हुई उनकी सेवा की, बस किसी प्रकार से छुट्टी मिल गई भगे घर से, रात पथ छोड़ दिया भागने का, वन पथ से चले, 7 दिनों तक कुछ नहीं खाया पिया, 15 दिन भी, 1 महीने का रास्ता 15 दिन में तय किया, 7 दिन के बाद में कहीं ग्वाले के घर में गए तो वहां से उन लोगों ने कुछ दूध पिला दिया, कहीं मुही दे दी, मुरमुरा दे दिया, कहीं सूखा चिड़वा दे दिया, कभी ले लिया कभी उठी नहीं, रात दिन चलते 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 पूरी में पहुंचे, छोटा सुकुमार ट्रेन नहीं, जब रिजर्वेशन बिना हम नहीं जाएंगे, रिजर्वेशन करा करके पूरा खुराक और 2-4 हजार पॉकेट में रुपया लेकर के तब चलेंगे वृंदावन, वृंदावन जवाहर न है ये परिपाटी, वृंदावन जाने की ये परिपाटी नहीं है, घर में सब कुछ छोड़ दो, सुखो जलांजलि देकर बिना पैसे कल क्या खाएंगे इसकी भी चिंता छोड़ करके केवल कृष्ण की चिंता को लेकर के जो चलना चाहे वो तो आए, रोने के लिए आए। रघुनाथ दास गोस्वामी रोते रोते गए, महाप्रभु जी ने गले से लगा दिया, हाँ ये तुम पैखाने के गर्त को छोड़ करके आज निकल करके तू आ गया, बस गले से लगा। और पासी में स्वरूप दामोदर बैठे थे, उनके हाथों में उनका हाथ, आज ये तेरे सर्वस्व है, माता पिता गुरु भाई बंधु सब आज मैंने तुमको सौंप दिया, मैं निश्चिंत हूं, भगवान ऐसे गुरु को ही सब सौंप दे। बस उस दिन से वे स्वरूप के रघु बन गए, रहने लगे। कालांतर में उनके बैराग्य की तो आप लोग सब बातें जानते हैं, कैसे खाते थे, पिता ने उनको भोजन के लिए व्यवस्था की नहीं दिया, गाय खा लेती थी, ठाकुर जी का मान अन्न सड़ जाता था, उसको धो करके पानी में सड़े हुए को निकाल करके थोड़ा सा नमक दे दिया, बस एक ग्रुप ग्रास खा करके जीवन कटा, कपड़े में मात्र लंगोटी, हाथ में करुआ, केवल करुआ मैंने मिट्टी का पात्र, वजन पर बस वही सब कुछ, न लोटा न थारी न कंबलिया कुछ भी नहीं, पूरी एक ऐसी जगह है समुद्र के किनारे, न गर्मी न शाम, वहां पर किसी प्रकार से कहीं से गुदड़ी मिल गई, राजकुमार अब गुदड़ी छोड़ करके सोता है, दूसरों के छोड़े हुए कपड़ों से डोर कॉफिंग बना करके भजन करता है, और हम लोगों को देखिए ये कैसे। महाप्रभु चले गए 48 वर्ष की उम्र, अन्न छोड़ दिया महाप्रभु के विरह में, दिन रात रोते रहते, ये साधन है, साधन की बातें बतला रहा, ऐसा कोई साधन कहते ये साधक है। महाप्रभु चले गए तो अन्न छोड़ दिया, सब दामोदर महाप्रभु के विरह में उन्होंने भी शरीर को त्याग कर दिया है, वो भी गोलोक बैज ब्रज में चले गए, पानी छोड़ दिन रात रोते रहे, नहीं रह सके, क्यों ना रह सके, जैसे नंद बाबा की दशा, घर में कृष्ण की स्मृति हो रही है ना, कृष्ण की लाला की ये झिंगली है माने पीताम्बर की, ये बांसुरिया है उसकी, ये वेणु है, ये मोर पंख है, दिद करके तड़पती रहती थी और उनके पिताजी तड़पते रहते, सोचा कि ये घर में जमुना के किनारे जाए, जमुना के किनारे जाते हैं, देखा कृष्ण के चरण चिन्ह, आ मेरे बोलो, कालियादान के पास में पहुंचा, अरे यही पृथ्वी के ऊपर में से ये चढ़ करके पिता, और स्मृतियां हृदय में आने लगे, आंख बंद कर दिए, कभी यहां नहीं देखा, गोवर्धन जय, वहां देखा जो समस्त प्रेम मानव कृष्ण के विरह में तड़प रहे हैं, जहां जाए कृष्ण की स्मृति, राधा कुंड श्याम कुंड विराज गोवर्धन कुसुम सरोवर मानस गंगा, जहां जाए विकल हो गए उसके प्राण, फिर घर को लौट गए। ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु की असर्व दामोदर के स्मृतियों को देख करके विरह में आतुर हो जाए, यहां नहीं रहे, पैदल चल दिए और चले आए वृंदा, रूप गोस्वामी के और रघुनाथ सनातन गोस्वामी के चरणों में अपने को अर्पित कर दिया। अब समय आपका आए थे, किस लिए आए थे, जब रूप नहीं रहे, महाप्रभु नहीं रहे, स्वरूप राम कर, अब मैं नहीं रहूंगा, जाऊंगा गोवर्धन में, ब्रज में ही गोवर्धन में चढ़ करके वहीं से कूद करके,
झुक पाते और नहीं तो राधा कंड में अथाह जल है, बस रात में आधी रात में उसी में छुट जाऊंगा और राधा जी को ही प्राप्त हो जाऊंगा। इसलिए आए विरह एक ऐसी चीज है, किंतु रूप सनातन ने उनको ऐसा उनका किया जिससे कि वो भूख पाते रह गए और राधा कुंड में उनको रहने के लिए स्थान दिया। फिर राधा कुंड का ये सब सेवा उन्होंने की थी। कुछ दिन चले, रूप और सनातन जी भी कुछ दिनों के अंतर में महाप्रभु के विरह में नाराज करके वो भी चले गए। आप किसके भरोसा रहे? गरिंद्रम अजगराय, गिरिराज गोवर्धन उनके लिए अजगर बन करके मानो उसको ग्रास कर लेंगे। कुंडम कुंडाय, राधा कुंड व्याघ्र होकर के मानो उनको निकल जाएगा उनके विरह में। जीवाय महागोष्ठ गोष्ठ नंद गांव बरसाना इत्यादि कृष्ण के जो लीला कन्या जिसके लिए वो प्राण दान कर रहे थे आज वो भी न्यायुतम रूप गोस्वामी के विरह में। फिर उन्होंने जल जो पी रहे थे वो जल भी छोड़ दिया प्राण धारण करने के लिए। कभी कभी चुल्लू भर मत्था ले लेते और यदि एक चुल्लू से कोई बेसी दे देता तो उनके लिए प्राण का संकट उपस्थित हो जाता किसी प्रकार से। क्या करते थे? क्या विलाप किया करते? राधा कुंड के किनारे धूल में लोट पोट जाते और हार आधे हे ललिते ब्रज देव के चलते हे नंद सुनो कुत श्री गोवर्धन कल्प पाद तले कालिंदी वन्ने कुत घोषणता सर्वतोखे दई महाबीपलौ वंदे कृष्णा। इस प्रकार से भजन करते थे ऐसे लोट को और उस समय उनके हृदय से जो उद्गार रूपी पुष्प निकलते थे उसी की माला गूंजते थे और राधा जी के चरणों के नखों की ज्योति को ऐसा यदि कोई करे तो ये साधन है राधा कृष्ण को मिलने के लिए। कर्म से स्वर्ग इत्यादि मिल जाना चुटकी बजाते ही ये संभव हो जाएगा। कोई लोग सदैव ही स्वर्ग चले जाते हैं चेष्टा करने से। वैकुंठ में भी ध्रुव सब शरीर भी चले गए कुछ दिनों की तपस्या से, किंतु कृष्ण भक्ति सुदुर्लभा। कृष्ण की भक्ति जो है ऐसी भक्ति जो अभी कहा ये बड़ी सुदुर्लभ प्राप्त। ऐसे ऐसी वो कुसुमांजलि बनाई राधा जी की सेवा की प्रार्थना उसमें है जो। फिर आदमी जी आपके घर में झड़ देने के लिए मुझे कभी ऑफर मिलेगा जो मैं गोपी के रूप में अपने केशों से आपकी नालियों को धोऊंगा इतर और केवड़े के जल से। हाँ आपके चरणों में अवतार लगाने का मुझे कभी भी अवसर हो सकता है। ऐसी ऐसी प्रार्थना ये लोग साधक है साधक रूप से ये सब करते। स्मरण कीर्तनम विष्णु स्मरणम, यहां पर विष्णु माने राधे राधा कृष्ण का जीवन का स्मरण करना है। यहां पर शरणं कृष्ण की कथाएं ही उनके लिए कर्णभूषण है केवल, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनना चाहते। वैकुंठ में भी नहीं जाना चाहते रघुनाथ दास को क्षण वैकुंठ में भी नहीं जाना चाहते। यहां पर भी कहीं भी कृष्ण कथा हो रही हो राधा जी की कथा हो रही हो विश्व में कहीं भी, मैं वृंदावन में ग्वालों के साथ में गोपियों के साथ में संसारिक बातों का आलाप करता रहूंगा उनकी झोटी रोटी एक टुकड़ा भी मुख में दे दूंगा, किंतु ब्रज छोड़ करके राधा कुंड छोड़ करके मैं कदापि शरीर जा सकता है मेरा प्राण जा सकता है। इस प्रकार की निष्ठा बनी ये लोग साधक माधवेंद्रपुरी पाठ का जीवन साधक ऐसा जा रहे हैं। गोवर्धन जी ने कहा श्रीनाथ जी ने भाई यहां पर मैं बहुत दिनों से पड़ा हुआ हूं हमारी सेवा कब करेगा इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करता हूं। कब कौन आश्रे माधवेन्द्रपुरी
माधवपुरी
करीबे सेवा, उसके लिए ललकते हैं, उनकी सेवा को पाने के लिए ये भगवान साधकों तो ये लोग साधक। हम लोग अभी क्या है, भक्ति का पहला सोपान श्रवण कीर्तन है, किंतु इसमें एक अनिश्चिता भक्ति और निश्चिता भक्ति दो प्रकार की। पहले इसमें हम लोग अभी अनिश्चिता भक्ति के अंतर्गत जो अभी साधक है अंतर्मुख है वो भी अनिश्चिता भक्ति। अनिश्चिता माने जिसकी बुद्धि निश्चलात्मक रूप में निश्चित नहीं हो गई है वो ना? और किसी की निष्ठा बुद्धि हो जाए कब होगी, अपने माता पिता के साथ में घर में ही रह करके भजन करो, क्योंकि माता पिता भी तो वृद्ध हो गए। पापा सुनते हैं कि घर तो नरक कुंड है, इसको छोड़ करके आश्रम में जाकर के बनू में ही सोचता है कि अर्जुन श्रीवास आचार्य और बड़ी बड़ी भक्त लोग गोपियां ये तो सभी गृहस्थ थे, इसलिए गृहस्थ रहना चाहिए। किंतु नारद जी सुखदेव गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु इत्यादि भक्त लोग मीराबाई इत्यादि घर ये तो संसार को अंध को का करके और छोड़ दिया है, इसमें भजन नहीं हो सकता है, अब मैं क्या करूं। अच्छा कुछ दिन रहा हूं इसके बाद में नहीं आगे चल रहा है, उधेड़ गुण में पड़ा हुआ है, निष्ठा भी नहीं है इसको, इसको भक्ति तो कर रहा है किंतु अनिश्चितता है। जब ये बुद्धि निश्चलात्मक रूप में ठीक हो जाएगी कि मुझे कहां रखना है भजन कैसे करना है, तब ये निष्ठा है। निष्ठा आने पर भी अभी अनर्थ है चार प्रकार के, यदि भक्ति करने लगेंगे शुद्ध रूप से हरिनाम करने लगेंगे हरि कथा सुनेंगे प्रतिष्ठा बिना बुलाए अपने आप आएगी। भक्ति मुक्ति भक्ति मुक्ति मुक्तांजलि सेवते स्मान धर्म आप काम कतया समय प्रतीक्षा, मुक्ति हाथ जोड़ करके खड़ी रहेगी पीछे तो आखिर मैं सेवा कर दूं नहीं देखा जाने का नहीं आ जाएगी अष्ट सिद्धि नौ निधि आन की बात किया साक्षात्कार कह लीजिए प्रभु हमारी सेवा। उन भक्तों की तो बात क्या है, हम ही लोग कहेंगे नहीं हम नहीं चाहते, हम लोगों की तो बात क्या तो ये सब साधकों के यहां भी हाथ जोड़ करके खड़ी रहेंगे ये सब लोग। तो किसकी बात कह रहा था, अनिश्चिता भक्ति प्रारंभ निश्चय हो जाने पर भी जब हरिनाम करेंगे जरा थोड़ा सा मन लगा करके मन लगने लग गया थोड़ा सा निष्ठा हो गई उसमें ये सब अनर्थ है। पूर्व जन्म के किए हुए संस्कारों से कुछ कर्मों का फल आएगा पाप और पुण्य का, और भक्ति का कुछ जो अभी कर रहे हैं वो कर्म मिश्रा भक्ति औपाधि भक्ति सकामा भक्ति तो उसका फल आ जाएगा। बड़े बड़े जो जिसको बड़े बड़े लोग चाहते हैं वो चीजें उनको नहीं मिलती, वो भोग सब उपस्थित हो जाएंगे, प्रतिष्ठा बहुत आएगी, और यदि इन प्रतिष्ठा में भोगों में आप डूब गए तो डूब गए, इनसे भी सावधान। पूर्व जन्मों के पाप से आपके ऊपर में रोग भी आ जाएंगे, और रोगों के निवारण में आता है भगवान भगवान कुछ नहीं है बेकार का, ये साधु लोगों को भी जाना पड़ता है बंबई और इधर उधर और दुख भोगना पड़ना पड़ता है, इनको भी लंबा मार गया ये हो गया वो हो गया, क्या उनका वक्त करते बस डूब जाएंगे। इसलिए ये चार प्रकार के अंदर भक्ति उत्थ पाप उत्थ सुकृति उत्थ और अपराध उत्थ। आपको यदि वैष्णव के चरणों में अज्ञान निधि भी यदि अपराध हो गया तो उसका फल भोगना पड़ेगा। तो ये चारों प्रकार के अनर्थ रहते हैं वो भी छोड़ देना पड़ेगा, इससे आगे बढ़ते जब रुचि हो जाएगी तब उसको कहते हैं रुचि उसी निष्ठा को, और रुचि होने के बाद में तब फिर आसक्ति होगी। आसक्ति होगी दो प्रकार की, रुचि भी बहुत प्रकार की है। आसक्ति में अपने भजन के प्रति पूर्ण आसक्ति रहे। गुरौ गोष्ठे गोष्ठालय सुने भूगुरुगणे सुमंत्रेशी नामनी ब्रज्व दंदे सरणे सदादम्बम हित्वा गुरु गतिम अपूर्वम अतितनाम मये शंकर सादस चतुर्विद्या। अपने मन को ठीक करते ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे मन माए चरणों को पकड़ करके मैं प्रार्थना, क्या गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसमें मेरी आसक्ति हो, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसमें आसक्ति, कृष्ण का जहां जहां जो जो गोष्ठ में लीलाएं हुई हैं, राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन नंदगांव बरसाना साकेत और सबसे अधिक राधा कुंड सही है, राधा जी का वास स्थान जापर, राधा जी को सेवा करने के लिए कहां आना पड़ेगा, जावत से टीम में आती हैं वो राधा निवास करती हैं वहां पर चलते वहां पर, तो इन सब स्थानों में उसकी भावना रहेगी, निष्ठा आसक्ति रहेगी भजन में और भजनीय में, भजन के जो ये है श्रवण कीर्तन इत्यादि इसमें, और भजनीय मैंने राधा कृष्ण में और भजन में श्रवण कीर्तन, दोनों में जब पूर्ण रूप से रुचि हो जाएगी परिपक्व दशा में, तो इसको कहते हैं आसक्ति, तब भगवान की कृपा से उसके हृदय मद भक्त हो।
तो कृष्ण का एक भक्त था ब्राह्मण, गीताकारो पाठ करता है, पाठ करते करते उसके अंदर में बहुत सी भावनाएं पैदा, बहुत से ग्रंथों को पढ़ा और उसकी गीताएं भी आदत थी, गीता की दृष्टि पर उसकी इच्छा हुई कि लोगों के कल्याण के लिए हमारे अंदर में जो भावनाएं आ रही हैं इसको मैं लिख दूं, भविष्य में छप जाएंगे उसमें छपी सिद्धि नहीं लिखी जाएगी और लोगों के यहाँ पहुंच जाएंगे तो इसके भावों को लोग समझ कर सकेंगे और ऐसा ही करेंगे। वो प्रारंभ से ही कुछ नहीं करता, केवल भिक्षा के लिए एक घंटा आध घंटा जाता और बाकी समय में ग्रंथों का अध्ययन भगवान का नाम करना और श्रवण कीर्तन इत्यादि में लगा था। विवाह उसका हो गया था, गृहिणी भी मिल गई, गृहिणी भी बड़ी संतोषी मिल गई और भी बड़े संतोष कर सोचते थे जो भगवान देगा उसी से हम जीवन का निर्वाह करें, कोई भी लावता नहीं, बस गीता पढ़ता अध्ययन करता विचार, बस दो पाँव में जब सब लोग खा पी लेते तो वो जाता था तो भिक्षा लेकर के बच्चे ब्राह्मणी ऋषि को बना, ब्राह्मण से एक कपड़ा केवल अच्छा था थोड़ा सा पहनने लगा, उसका कपड़ा तीन फुट हो गया, तीन फुट मैंने जानते हैं उठने के बाद में तीन फुट ठंड ठंड हो जाए ऐसे तीन फुट टुकड़े हो गए, इसलिए घर में तो वो बेचारा पहन लेता किंतु बाहर जाना है इसलिए आज अपनी पत्नी के ही कपड़े पहनकर जाने के पहले वो कुछ लिख रहा था गीता का अर्थ, एक श्लोक आया अनंत चिंतन तो प्रतिपाठा जो अनन्य चित्त से मेरा परिपाक से सर्वतो भावेन अपने चित्त को स्थिर करके, जो हमारा अनन्य भावेन अनन्य भाव से न अन्य राधा कृष्ण के अतिरिक्त और किसी का नहीं कृष्ण के अतिरिक्त और कृष्ण का जो भजन करते हैं उसका फल भी कृष्ण को मिले, कृष्ण प्रश्न हो हमारे लिए न हो तब तो अनन्य होता है। यदि दुराचारी व्यक्ति भी ऐसा भजन करे तो कृष्ण का वो कृष्ण उसको ग्रहण कर लेते हैं और ऐसा अनन्य भाव नहीं आएगा तब तक कृष्ण नहीं अपनाएंगे, ये साधन अवस्था की बात है, भक्ति की बात है, सिद्ध में जन तो वो अनन्य भाव से भगवान के ऊपर में आती था जो कृष्ण राखे रखे आए, कृष्ण का अतिरिक्त कोई हमारा रक्षक नहीं है, कृष्ण हमारे रक्षक है, पालन करने वाले बड़ी
बहुत दिन भी भाव से रहता है जो उसके लक्ष्य शरणागत था। किंतु उस गीता के श्लोक को आज पढ़ करके उसके अर्थ में हर भावना आई अनन्य भाव ही न जोड़ती जो अनन्य भाव से हमारा भक्ति पाठ से सब प्रकार से हमारी उपासना उप आसन निकट में भी अवस्थित हो जाता है हमारे कीर्तन के माध्यम से श्रवण के माध्यम से उसका जो वक्त है खाना पीना जो नहीं है उसका पहन करके मैं धो करके ले जाऊंगा। आप जो चीज है संरक्षण रखता ये बात तो ठीक है क्यों आज मुझे 50 वर्ष हो गए मैं बूढ़ा हो गया 70 वर्ष का बूढ़ा है आज तक हमारी कोई सुधुरों ने नहीं ली प्रभु ने अनन्य रूप से मैं उनका भजन करता हूं। आज हमारे घर में चूहे नहीं क्यों चूहे नहीं
पहले तब तो
कुछ है ही नहीं है तुम्हारे घर में चूहे बरसात का पानी हमारे घर से बाहर नहीं जाता क्यों नहीं जाता छप्पर नहीं और हड़िया में कुछ है कुछ भी नहीं हमारे घर आज रसोई क्या बनेगी नहीं है अभी जितना जाएंगे यदि कुछ मिल गया तो मिल गया नहीं तो आज उसके भी नहीं तो क्या प्रभु ये नहीं जीतते हैं क्या सर्व जाति नहीं है तो जरूर वो हमारी सुधि नहीं है। हो सकता है किसी को प्रेरणा देकर के हमारे पास में कुछ भेज दें किंतु अपने बांस बाहनी के ऊपर निवे करके धो करके देते हैं स्त्री पर ये मैं नहीं मानता लाल कलम से उसे श्लोक को हिसाब किया ये कृष्ण का कहा हुआ श्लोक हो ही नहीं सकता है किसी दूसरे ने घुसा दिया अय्या जैसे कृष्ण ने भी कहा है कि इस बात हाँ जाओ जी समाप्त करते ये समाप्त करते ये कहानी क्या हुआ साथ करते बोले जैसे हमारी वो कपड़े दे दो पहन लो मैं भिक्षा जाऊं
करके भिक्षा करने के लिए
सोच रहे हैं काट दिया क्या कभी कृष्ण हो सकते हैं अपने शरीर से हाँ किसी राजा महाराजा या किसी धनी आदमी को प्रेरणा कर देंगे वो दे जाएगा अपने सीख पर और कंधे पर नहीं भुलाने की जरूरत क्या है सर्व जाति सर्वशक्तिमान प्रभु सुदामा जी को उन्होंने ढो करके दिया इच्छा कर भी हो गया ना रंग से राजा बना दिया हो करके तुम भी दिए किसी को तो हमने सुना नहीं काट करके चले गए यही बस चिंता यही कर रहे हैं भिक्षा जा रहे हैं घूमते घूमते 3 बज गया आज भिक्षा नहीं एक अणु भी एक शत्रु का अणु भी कोई नहीं दिया कोई नहीं दिया बाबा कल आगे बढ़ जाओ आज हमारे घर में सूतक है आज अभी 3 दिन तक हम घर से नहीं निकल सकते बाबा भी कोई मर गया है ऐसे ऐसे कोई लौके घर में आ रहे हैं इधर क्या होता है एक सुंदर सा सलोना सांवला बच्चा सितंबर की पश्चिमी का खेल अपने कंधे पर बांगी दिए हुए बांगी जानते हैं बांग और एक तरफ में टोकरी में भरा हुआ चावल दाल दूसरी तरफ तरह तरह की चीजें जिसको एक पहलवान नहीं ढो सकता एक छोटा सा किशोर 14.5 वर्ष का लड़का सावला सा बड़ा सुकुमार श्रीअंग पसीने से तर तर हो रहा है और गेट पर पहुंचा गुरुवाणी जी दरवाजा खोलिए गुरु मां दरवाजा खोलिए अजय गुरु आज तक तो कोई उनका शिष्य नहीं आया हो सकता है कोई शिष्य मैंने कौन है, अरे मैं बोल रहा हूँ गुरु जी का, मैं शिष्य हूँ, क्या बात है कैसे आए, अरे खोलिए दरवाजा पहले देखिए तो, वो तो ले जा रही थी ना कपड़ा बदल करके गई है, चिरकुट पहनी हुई है, कपड़े तन ढकने के लिए नहीं। कृष्ण समझ गए, काजे खोलिए तो अपना हाथ बढ़ा करके अपना दुपट्टा उनके मुंह पर फेंक दिया कृष्ण ने, मैया गुरु जी ने भेजा है, ये सब चीजें उनको मिली और मुझे पुकारा कि आ जाओ बेटा जल्दी से गुरुवाणी के यहां पहुंचा दो, मैं अभी आ रहा हूं। इसलिए चीजें हमको घर में भेजने के लिए भेजा और मैं अजय थोड़ी देर ठहर जाइए, अभी मैं जरा पानी पी करके आऊ, थोड़ी सी देर ठहर जाइए। उन्हें तो नहीं अभी सूरज जाना है, पानी पीना और सब काम पीछे होगा, सारे घर में जाओ। किंतु फिर भी मुझे देरी हो गई और इतना सुकुमार देखने में छोटा सा बच्चा और इतना लाभ दिया है, मुझसे चले नहीं। गुरुवाणी सुनते सुनते रोने लग गए, इतना सुकुमार बच्चा पसीने से तरबर हो रहा है, उस ब्राह्मण को इतनी दया नहीं, ये अपने कुछ लिया है, हाँ दुलाते हुए तो आएंगे और सब कुछ इसके ऊपर निर्भर किया, तनिक दया नहीं। सब मैया उन्होंने मेरे नाखून से चीर दिए, देरी होने पर चीज दिखला दिया, उभर रहा है तुम मानो अभी आएगा, नख से चीरा हुआ, बस गोदी में ले लिए बच्चे को, बेटा ऐसा नहीं अभी आता है, मैं उसे दो चार जल्दी का चीज सुनाऊंगी, बड़ा वो बनता है भी और बड़ा भक्त बनता है, एक बच्चे पर उसे दया नहीं है। बस बेटा आओ, बस भीतर ले लिया, ले गई अपने हाथों से दोनों से मिल करके, अब ले गई बस एक मिनट और बस घर में ले गई, बेटा तू यहीं पर बैठ, मैं रसोई बनाती हूँ, बिना खिलाए भी नहीं जाने दूंगी, जाकर के रसोई में लग गई, जो चीज लाया था उसने चावल दाल दी, बड़ा स्वादिष्ट बने नहीं, आज यही खाएंगे और हम भी खाएंगे, तो भी बच्चा भी खाएंगे, पानी पिएगा तो नहीं पानी, अभी आ जाते हैं, कितने में दस्तक पड़ी, खोलो खोलो, ब्राह्मण आ गए, बड़ी बिगड़ती हुई भीतर से और गई, बात सिखा दी, कुछ ले आए, हाथ धुलाते हुए आ गए, सब भार उसी बच्चे के ऊपर में दे दिया, और थोड़ी सी देर हो गई तो आपने उसे बकोट दिया नखनों, थोड़ी सी दया नहीं आई, अरे तू पगली हो गई है ना क्या, मैं तो कुछ नहीं जानता, अरे उस बच्चे को आपने क्यों फिर आधे आप ले आते आधे दे देते, या किसी प्रौढ़ आदमी को भेजते, उस पर क्यों लाते, अरे कौन है क्या मुझे पता नहीं, पता नहीं आपको, चलिए तो देखिए तो घर में कौन सा छोटा सा बच्चा है उसके ऊपर में आपने लाद दिया, आप नहीं ले आए और ऊपर से खींच दिया उसका, देखे तो कहां है, देखें चलो भीतर आए, यहां बैठा करके गई थी चबूतरे पर, घोड़ा एक डाल दिया, दिखा नहीं, इधर खोजा उधर खोजा उधर खोजा, ये कहां बालक, खोजते 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 हार गए। ब्राह्मण ने कहा जरा गीता लाना, तो गीता लेकर के आई, हाथ में देवी खोला, देखा जी वो लाल रंग नहीं है, काली का कटा कर, बस दखक दखक कर करो, आज हमारे लिए ये प्रभु कैसे हो करके ले आए, ये प्रमाणित है, मेरा संदेह दूर हो, ये भक्ति है, ऐसा भक्ति करो, साधन ये उदाहरण, ये साधन अवस्था है, हम लोग अभी साधन अवस्था। अर्जुन ने कहा प्रभु ये हुनर तो मेरे लिए बड़ा भारी मुश्किल है, शरणार्थी में मना भाव तो होगा ही नहीं, मदभक्त तो भी नहीं होगा, हमारे लिए कुछ सरल सहज दिखा, कुछ बतलाइए जिसको, अब इसके लिए कल हम बता रहे पंचायत और पत्र बाकी थर
Thank you. Oh.